गोपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, यमुना तीरावन चारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, जयो राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, యశోదానందన బ్రజ జనరంజన యశోదానందన బ్రజ జనరంజన యమునా తీరావన చారీ యమునా తీరా యమునా తీరావన చారీ యమునా తీరావన చారీ మాధవ కుంజ బిహారీ జయో రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే రాధా గిరిధారీ రాధే రాధే జయో జగన్నాథ జయ జగన్నాథ బలదేవా జయ సుభద్రా నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నిత్యాయ గౌర హరి బోల్ జయ జయ ప్రభుపాద 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 జయ జయ ప్రభుపాద 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 జయ జయ ప్రభుపాద
శ్రీల ప్రభుపాదికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హోమక్య ఓ నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవం నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీ వ్యాసం దదో జయాముదీరై నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 9వా అధ్యాయ 7వా, ఇంకా శీర్షకే మందాతాకే వంశజ్. శ్లోక సంఖ్య నంబర్ 7. तो कृपा करके मेरे पीछे इन श्लोकों का आप उच्चारण करिएगा. त्रैशंको हरिश्चंद्रो, त्रैशंको हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वशिष्ठयो, विश्वामित्र वशिष्ठयो యన్నిమిత్తం బహుద్యుద్ధం, యన్నిమిత్తం బహుద్యుద్ధం పక్షీనూర్బహువర్షికం, పక్షీనూర్బహువార్షికం త్రైశంకో హరిశ్చంద్రో, త్రైశంకో హరిశ్చంద్రో విశ్వామిత్ర వశిష్టయో, విశ్వామిత్ర వశిష్టయో యన్నిమిత్తం బహూత యుద్ధం, యన్నిమిత్తభూతయుద్ధం పక్షీనోర్బహువార్షికం, పక్షీనోర్బహువార్షికం इनके इनके पहले के कुछ श्लोक हैं जिसको हम एक बार पढ़ेंगे फिर आज के श्लोक पर चलते हैं। गंधर्वम अवधित तत्र वध्यान वै विष्णु शक्ति दृक्ष नागाल लब्ध वरह सर्पाद अभ्यम संस्मृताम इद्धम। जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। त्रिशद्धयुश्च पौरुकुष्टो यो नारायणस्य देहकृत हरस्य स्वस्तद सूतस्तस्मात् प्रारूणो तथा त्रिबंध तस्य सत्यावृत पुत्रस त्रिशंकुर इति विश्रित्ता प्राप्तश्चंडालतां शापात् गुरुः कौशिक तेजसा सर सश्रीरो गधा स्वर्गम अध्यापि दिवी दृश्यते पातितो वाक्षशीरा दैव तेनैव स्तंभ स्तंभितो बलात्। अनुवाद श्ल प्रभुपाद जी के द्वारा। श्ल प्रभुपाद की रसातल में भगवान विष्णु द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने के कारण पुरुकुष्ण वध्य गंधर्वों का वध करने में समर्थ हो सका। पुरुषुक्तस को सर्पों से यह वर प्राप्त हुआ कि जो कोई नर्मदा द्वारा रसातल में उसके लाए जाने के इतिहास को स्मरण करेगा उसे सर्पों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुरुषुक्तस का पुत्र त्रैशत्सु हुआ जो अनरण्य का पिता था। अनरण्य का पुत्र हर्ष्व हुआ जो प्रारूण का पिता बना। प्रारूण का पुत्र त्रिभंद हुआ। त्रिभंद का पुत्र सत्यव्रत था जो त्रिशंकु नाम के विख्यात है। चूंकि उसने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण पुत्री का अपहरण कर लिया था इसलिए उसके पिता ने उसे चांडाल बनने का शाप दे दिया। तत्पश्चात विश्वामित्र के प्रभाव से वह सदेह स्वर्गलोक गया। सहदेह स्वर्गलोक गया किंतु देवताओं के पराक्रम से वह पुनः नीचे गिर आया। तो भी विश्वामित्र की शक्ति से वह एकदम नीचे नहीं गिरा। आज भी वह आकाश में सिर के बल लटकता दिखा सकता है। आज भी लटक रहा है। तो आज का शब्दार्थ इस प्रकार है। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र विश्वामित्र तथा वशिष्ठ के मध्य यतनिमित्तम हरिश्चंद्र को लेकर अभूत हुआ युद्धम भीषण लड़ाई दोनों पक्षी में बदल दिए गए थे। बहुवर्षिकम अनेक वर्षों तक। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र को लेकर विश्वामित्र तथा वशिष्ठ में युद्ध हुआ। वे दोनों पक्षी के रूप में बदलकर वर्षों तक लड़ते रहे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, विश्वामित्र तथा वशिष्ठ सदा शत्रु बने रहे। पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे और अपनी तपस्या द्वारा ब्राह्मण बनना चाहते थे, किंतु वशिष्ठ उसे स्वीकार नहीं कर सके। इस तरह दोनों में विरोध उत्पन्न हुआ, किंतु बाद में विश्वामित्र के क्षमा मांगने पर वशिष्ठ ने स्वीकार कर लिया। एक बार हरिश्चंद्र ने एक यज्ञ किया जिसके पुरोहित विश्वामित्र बने, किंतु अप्रसन्न होने के कारण विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली। यह वशिष्ठ को अच्छा नहीं लगा, अथवा वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों उन्होंने एक दूसरे को शाप दे डाला। एक ने कहा तुम पक्षी बन जाओ और दूसरा ने कहा तुम बतख बन जाओ। इस तरह दोनों पक्षी बनकर वर्षों तक हरिश्चंद्र के लिए लड़ते रहे। हम देखते हैं कि सौबरी जैसे महान योगी काम वासना का शिकार बना और वशिष्ठ तथा विश्वामित्र जैसे महर्षि पक्षी बने। यही तो संसार है। अब्रह्म भुवना लोका पुनरा अरविंद अर्जुना। इस भौतिक जगत में कोई भौतिक गुणों में कितना ही महान क्यों ना हो, उसे जन्म मृत्यु जरा तथा रोग सहना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि इस संसार कष्टमय है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवत का कथन है, पदम पदम यत विपतम, प्रत्येक पग पर संकट है। अथवा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से इस भौतिक जगत से बाहर निकालने का अवसर प्रदान करने के कारण मानव समाज के लिए सर्वोच्च वर है। होमज्ञानेन तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददापि स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सार्वधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाधान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। तो यहां पर मंदाता के वंशावली के विषय में चर्चा हुआ है और जो आज के श्लोकों में बताया गया है कि किस प्रकार वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच में भीष्म युद्ध हुआ। तो ये जो भीषण युद्ध, इस युद्ध में दोनों जन ने एक दूसरे को श्राप दिया और दोनों जन पक्षी बन गए और पक्षी बनकर हजारों वर्ष तक युद्ध किए। तो यहां पर श्री प्रभुपाद जी इसके इन तात्पर्य में बताते हैं, एक तो सौभ्र मुनि की कथा कि किस प्रकार सौभ्र मुनि ने अपने काम वासना के कारण, वो वैष्णव अपराध करने के कारण किस प्रकार वो अपने पद से गिरकर अपने समय को बर्बाद किए। अब यहां पर विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि दोनों जन अपने जो योग शक्ति का जो बल है वो व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। इस प्रकार लड़कर विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि का जो आपस में जो झगड़ा जो था वो पहले से चला आ रहा था। एक समय की बात थी कि विश्वामित्र मुनि जब वशिष्ठ मुनि के पास गए तो वशिष्ठ मुनि जो कि जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो विश्वामित्र मुनि अपने सारी सेनाओं के साथ गए। तो विश्वामित्र मुनि उस समय राजा थे, तो उनसे जब भेंट करने के लिए गए तब उसी समय वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि को बहुत अच्छी तरह उनको भोजन खिलाकर उनको अच्छी तरह आदर सत्कार किया। तो केवल विश्वामित्र को नहीं, उनके सारे जितने भी सेनागण थे सबको उन्होंने भोजन खिलाया। ये विश्वामित्र मुनि देखकर दंग रह गए कि ये वशिष्ठ जो कि एक मुनि है जंगल में तपस्या कर रहे, इनके पास ये सारी सामग्री आई कैसे। तब उनको पता लगा कि वशिष्ठ मुनि के पास एक कामधेनु गाय है, जो भी कुछ इच्छा करे वो सारी वस्तुओं को उपलब्ध करती है। तो विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि जीवन में कुछ हासिल करना है तो इस गाय को ही हासिल करना है। और तब विश्वामित्र मुनि ने अपनी सारी शक्ति लगा दी उस गाय को हासिल करने के लिए, मगर उस गाय जो कि सारी इच्छाओं को प्रकट करता है, इसीलिए उस गाय ने बहुत सारी सेनाओं को प्रकट किया, जिस सेना ने विश्वामित्र मुनि के सहित सारे सेनाओं को परास्त कर भगा दिया। अब विश्वामित्र मुनि ने उस गाय को हासिल करने के लिए तपस्या किए और शिव जी को प्रसन्न किया, और शिव जी को प्रसन्न किए तो शिव जी ने उनको छत्र बल प्रदान किया। अब छत्र बल जो ऐसा बल है जो सारे अस्त्र को परास्त कर देता है, मगर यहां पर वशिष्ठ मुनि के पास ब्रह्म दंड था, तो छत्र बल ब्रह्म दंड के सामने नहीं टिकता। तो वशिष्ठ मुनि ने उस समय भी उसको परास्त कर दिया। अब जब परास्त कर दिया तो फिर से उन्होंने तपस्या शुरू किए, तो ये ऐसी भयंकर तपस्या किए कि वो राजा से राज ऋषि बन गए ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। और राज ऋषि जब बन गए उस समय त्रिशंकु आए। तो यहां पर वर्णन है कि किस प्रकार त्रिशंकु पहले वशिष्ठ मुनि के पास गए, तो वशिष्ठ मुनि ने तो उनको नकार दिया, कहा कि जब तक पुण्य अर्जित नहीं होता तब तक स्वर्ग नहीं जा सकता। तो इन्होंने निवेदन किया कि मुझे जाना है, तो भी उन्होंने जब मना किया तब उन्हें पता था कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच में राजनीतिक झगड़ा चल रहा है, कुछ आपस में तनाव चल रहा है। तो उस तनाव का उन्होंने फायदा उठाकर विश्वामित्र मुनि के पास जाकर कहा कि वशिष्ठ मुनि नहीं छोड़ रहे तो आप समर्थ हो क्या। तो इन्होंने सोचा कि मैं त्रिशंकु को भेजूंगा अपने शक्ति के बल से। तो उन्होंने अपनी शक्ति लगाया, सहित उनको वो देह के साथ स्वर्ग में उन्होंने भेजा, लेकिन देवताओं की शक्ति के कारण वो बीच में ही अटक गया। श्री प्रभुपाद जी वर्णन करते कि आज भी त्रिशंकु बीच में लटका हुआ है, उल्टा सर। तो वैसे देखा जाता है कि इस प्रकार त्रिशंकु जो बीच में आज भी अटका हुआ है क्योंकि विश्वामित्र मुनि की शक्ति से, और उसके पश्चात त्रिशंकु के जो पुत्र थे हरिश्चंद्र, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिस यज्ञ में उस रासुई यज्ञ में यहां पर पुरोहित विश्वामित्र मुनि को चुना गया, मगर विश्वामित्र मुनि ने प्रसन्न न होने के कारण उन्होंने विश्वामित्र मुनि ने हरिश्चंद्र के जितने भी संपत्ति थे सारे संपत्ति को उन्होंने दक्षिणा के रूप में मांग लिया, और ये बात वशिष्ठ मुनि को पसंद नहीं आया, और वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच में झगड़ा हुआ। तो वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र मुनि को श्राप दे दिया, तुम पक्षी बन जाओ, और विश्वामित्र मुनि ने श्राप दिया तुम बतख बन जाओ, और ऐसे पक्षी बनकर वर्षों तक उन लोग युद्ध करते रहे। इस प्रकार दोनों भी अपने जो मूल जो उद्देश्य था भगवान की प्राप्ति का, उसको खोकर केवल झगड़े में लग गए। तो वास्तविकता दोनों जन सोच रहे कि ये मेरा दुश्मन है, और वो सोच रहा था वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वास्तविकता जो दुश्मन जो है वो हमारे हृदय में है, और वो है ईर्ष्या। तो ये ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है कि आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति को भी भ्रमित कर सकती है, उसे उसके जो लक्ष्य को चुका देती है, ये ऐसी ईर्ष्या है। श्री सुखदेव गोस्वामी छठम स्कंद में वर्णन करते कि ये ईर्ष्या का क्या परिणाम है। यह ईर्ष्या इस प्रकार है कि व्यक्ति के हृदय को कठोर कर देता है, और उसके जो बुद्धि की जो सोच की जो क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। तो कहते हैं विद्वेश नष्ट मथय स्त्रिय दारिशो चेतसा। विद्वेश नष्ट मथय, तो पहला जैसे ही ईर्ष्या जब हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो सबसे पहला क्या होता है, दारु चेतसा, उनका जो चित्त है वो कठोर कठोर हो जाता है, और वो कठोर चित्त से वो जो कठोर चित्त के द्वारा वो कुछ भी कार्य करता है तो केवल निर्दयी पूर्वक कार्य करता है, उसके सामने वाले के प्रति उसका कोई करुणा नहीं होता। और पहला जो लक्षण जो ईर्ष्या का है, और वो है उसका चित्त कठोर हो जाता है। तो वैसे चित्त रूपी कठोर में भक्ति लता बीज नहीं उग सकता, क्योंकि भक्ति लता बीज उगने के लिए उसका हृदय जो है वो जिस प्रकार खेती को सींचा जाता है, खेत को जिस प्रकार सींचा जाता है तब जाकर बीज उसमें बोना पड़ता है, तब जाकर वो बीज उगता है। ठीक इसी तरह जो हृदय जो है एक खेत के समान है, जिस खेत में भक्ति लता बी को जब बोया जाता है तो उस समय वो बी उगेगी जब हृदय अच्छी तरह सींचा गया हो, मगर जब हृदय एकदम कठोर होगा तो भक्ति लता बीज उगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और वैसे सूखे बंजर भूमि में कैसे उगेगा। तो पहला ये जो लक्षण है वो है कि हमारा हृदय कठोर हो जाता है ईर्ष्या के कारण। इसलिए एक वृंदावन के ब्रजवासी बता रहे थे कि भगवान कृष्ण माखन चोरी करते क्यों, क्योंकि तीन कारण है। तो पहले तो बताते हैं कि वो बहुत ही शुद्ध हो, बहुत शुद्ध है। दूसरा वो बहुत ही नम्र है, यानी कि बहुत मुलायम है। और तीसरा क्योंकि वो जो दही जो है, जिस दही में भगवान खाने के लिए ब्रह्ममृत अवस्था में उसको चोरी करते हैं, ये साधक भक्त के साथ तुलना किया गया है। तो बताते हैं कि पहला जो है वो साधक भक्त के जो हृदय को भगवान उस चित्त को चोरी करते हैं जब वो जो चित्त बहुत ही मुलायम होगा, दूसरा वो शुद्ध होगा, तीसरा ब्रह्ममृत अवस्था में चोरी करेंगे। क्यों भगवान ब्रह्ममृत अवस्था में चित्त को चोरी करते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है दिन में चोरी नहीं करते क्योंकि मक्खन थोड़ा कड़क हो जाता है, और संध्या समय पर इसलिए चोरी नहीं करते क्योंकि यशोदा मैया केवल इंतजार करती है कि कौन शिकायत को लेकर आ रहे मेरे लाला के लिए, ताकि मैं उसको बराबर करूं। और इसलिए भगवान सोचते हैं कि संध्या समय पर चोरी करना ठीक नहीं है क्योंकि खतरे से खाली नहीं है, सिक्योरिटी ज्यादा है, लेकिन सुबह के समय पर बहुत अच्छी तरह चोरी कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्ममृत अवस्था में जो भक्तगण है उन लोगों के जो चित्त जब कृष्ण में लगते हैं तो कृष्ण अच्छी तरह आसानी से चोरी करते हैं। इस तरह ये जो जब चित्त जब विनम्र रहेगा तब भगवान चोरी करेंगे। दूसरा लक्षण बताते हैं इस ईर्ष्या का, और वो है विद्वेश नष्ट मथेय। विद्वेश नष्ट मथेय, जब ईर्ष्या जब प्रवेश करता है तो तुरंत ही उसकी बुद्धि की जो सोच विचार की जो शक्ति है खत्म हो जाती है उसी क्षण। इसलिए उदाहरण दिया जाता है जैसे दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किए तो सभी लोग ने आदर सम्मान देकर खड़े हुए, मगर शिव जी बड़े आराम से बैठे थे, भगवान में पूरी तरह निमग्न थे। और ये स्थिति जब दक्ष ने देखा तो तुरंत ही शिव जी पर क्रोधित हो गए और वो कहने लगे, मरकट लोचन बंदर जैसी आंखें हैं, शरीर में भस्म लगाया है, केवल खोपड़ी की माला पहना, इस प्रकार नाना प्रकार से उनकी निंदा करने लग गए। क्योंकि दक्ष प्रजापति भूल गए कि वो किसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो जब ईर्ष्या जब प्रवेश करती है तो वो ईर्ष्या सामने वाले व्यक्ति की महिमा को भुला देता है और वो ये नहीं देखता है कि वो कौन है। ठीक है भक्त होगा तो, और जैसे ही भक्त होगा तो ये जो शब्द आता है उसी समय अपराध शुरू होता है। और दक्ष प्रजापति ने बिना सोचे समझे उन्होंने अपराध शुरू कर दिया। तो सबसे पहला उसकी जो शुरुआत होती है हृदय से, तो ईर्ष्या जब हृदय में प्रवेश करती है उसी समय बुद्धि के बल से उसको रोक दिया जाता है। जैसे इसका ठीक बहुत अच्छा उदाहरण है, वो है चित्रकेतु महाराज की जितने भी पत्नियां हैं, और सारी पत्नियां केवल एक ही पत्नी को कृपा मिला था, लेकिन बाकी सारी पत्नियां द्वेष करने लगी कि इसको ही क्यों मिल। और इसीलिए उन लोगों ने उनका हृदय इतना कठोर हो गया, जिस कठोर हृदय से उन लोगों ने बालक को जहर पिलाकर मार दिया। और ऐसे पहला चित उनका कठोर हुआ, और कठोर होकर चित कठोर होकर बुद्धि भी उनका विचार करने की शक्ति खो दिया। और इस तरह जो शुरुआत है वो हृदय से है। तो जब ईर्ष्या जब प्रवेश करती है तब उसी समय, जब हृदय में जैसे ही प्रवेश करती है उसी समय उस ईर्ष्या का शमन करना चाहिए। जैसे बताया जाता है ये जो चार चीज जो है वो बहुत जल्दी फैलता है, तो क्या क्या, तो कहते हैं जले तैलम खले घुयम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम स्वयं एपे विस्तार वस्तु शक्ति था। ये चार जो वस्तु है वो तुरंत ही फैलता है। तो क्या क्या, जले तैलम, जले तैलम यानी कि जो जल के भीतर अगर एक बूंद अगर तेल डाल दिया जाए तो तेल पूरी तरह फैल जाएगा। जले तैलम खले घुयम, कुछ घुय बात अगर कहना है तो उस खलनायक को बोल दो तो वो खलनायक तुरंत ही उस घुय बात को बड़े जोर से फैला देगा। फिर तीसरा पात्रे दानम, और तीसरा जो है पात्र दानम, एक उचित व्यक्ति को दान देंगे तो वो जो दान देने का जो प्रचार है बहुत जल्दी फैल जाएगा। और चौथा है शास्त्र ज्ञानम, अगर एक उचित व्यक्ति को अगर शास्त्र प्रदान करेंगे, ज्ञान प्रदान करेंगे तो तुरंत ही सबको जाके प्रचार करेगा। और जो आगे कहते मना गपी, यानी कि मन के अंदर जो अनर्थ है, ईर्ष्या रूपी अनर्थ, वो अगर थोड़ा सा भी आ गया तो उसे फैलने के लिए समय नहीं लगता, वो तुरंत ही दावाग्नि के जैसे तुरंत ही शुरू हो जाता है जलना। और इस तरह वो जो ईर्ष्या जब हृदय में प्रवेश करता है, उसी समय उस ईर्ष्या का शमन करने के लिए उसको, उस साधक भक्त को प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है हनुमान जी का, हनुमान जी जब लंका की ओर जब छलांग लगाए थे तो अनेक अनेक असुर का उनका सामना हुआ। तो एक असुर था सिंधी का, ये सिंधी का जो थी ये हनुमान जी के परछाई को बड़े जोर से खींचने लगी, और हनुमान जी के परछाई को खींचने के कारण इनके पास एक वर था कि जिसके परछाई को पकड़ लिया वो व्यक्ति की गति आगे नहीं बढ़ेगी, और इन्होंने ऐसे पकड़ लिया कि हनुमान की गति आगे जाने के लिए रुकी गया। तो हनुमान ने अपने आप को छोटा बनाकर उस सिंधिका के मुख में प्रवेश कर उनके हृदय को पूरी तरह चूर चूर कर दिया और उसका नाश कर दिया। तो यहां पर आचार्य बताते हैं कि ये जो सिंधिका जो है ये हमारे ईर्ष्या के साथ तुलना किया गया है। तो जब भक्ति में व्यक्ति जब जोर से प्रगति करता है तो प्रगति करते करते एक समय ऐसा आता है कि वो जो ईर्ष्या उसकी गति को रोक देता है। अब जब ईर्ष्या जब गति को रोक देता है तो वो कितना भी भक्ति का प्रयास करता है मगर उसके अंदर कोई बदलाव या सुधार नहीं होता, क्योंकि ईर्ष्या घुस चुका है। और ऐसे कारण वो व्यक्ति दूसरे के केवल दुष्परिणाम को या दुर्गुण को ही देखने का शुरुआत करता है, केवल गलतियां टूटियां ढूंढना शुरू करता है, और इस कारण से उनका अपराध पर अपराध बढ़ता जाता है। मगर हनुमान जी ने क्या उपाय खोजा, हनुमान जी ने सीधे ही उनके हृदय में प्रवेश कर उनके हृदय को ही वितीर्ण कर दिया। इस प्रकार हनुमान यहां पर ये शिक्षा दे रहे कि कैसे उस साधक भक्त को अपने हृदय में जब अनर्थ जब उठता है तो उस अनर्थ को उसे सीधे अपने हृदय से जड़ से उखाड़कर फेंकना चाहिए। तो उस जड़ से उखाड़कर फेंकने का क्या उपाय है, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में बताते हैं कि वो जो अनेक अनेक प्रकार के जो अनर्थ है उस सारे अनर्थ के सामने कैसे उसका शमन करे। तो कहते हैं प्रहलाद महाराज, अन्विक्षय को शोक मोह दंभ महत उपाय योगांतरयन मौने हिंसायाम कामादि अनिया। तो कहते हैं अन्विक्षय शोक मोह, जब हृदय में शोक और मोह का जब शिकार जब व्यक्ति होता है तो अनविक्षया, तो उसे भक्तों के साथ बैठकर शास्त्र का चर्चा करना चाहिए, या उसे जो शास्त्र के निचोड़ के ऊपर मनन करना चाहिए अनविक्षया। और धम्भ महत उपाय, और जब हृदय में जब अहंकार प्रकट होता है तो उसे महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। और योगांतरयन मौनेना, और जब भक्ति में दृढ़ होने की जब बात आती है तो उसे मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। मौन यानी कि क्या, ये नहीं कि कुछ नहीं कहना है, कहना है लेकिन केवल कृष्ण के विषय में। और हिंसाम कामादि अन्यया, और जब ईर्ष्या जो होती है, हिंसा जो ईर्ष्या जो होता है दूसरे के प्रति हिंसा ही प्रदान करता है, वो जब उत्पन्न होता है कामादि, उसको अपने हृदय में विषय भोग का जो क्रियाएं हैं उसको त्याग देना चाहिए। जब विषय भोग का जब प्रवृत्ति को जब त्यागते हैं उसी क्षण ये ईर्ष्या का नाश होता है। तो ये कैसे इसके साथ तालमेल है, एक ईर्ष्या और काम की पूर्ति, ये दो एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल है। तो बताते हैं कि ईर्ष्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है, कि जब कोई व्यक्ति किसी के विषय भोग में जब बाधा देता है तब उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होता है। और तुरंत ही उसके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होता है जिससे वो उसके साथ अपराध करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि मेरे विषय भोग में बाधा है। तो वो जो ईर्ष्या कब उत्पन्न होती है? जब कोई सामान्य जब भक्त होता है वो, या तो फिर उससे जो छोटा भक्त है वो जब उससे ज्यादा प्रगति करता है तो उस प्रगति को देखकर सहा नहीं जाता है और वो असहनीय होता है, जिसके कारण उसके मन में वो ईर्ष्या उत्पन्न होता है। क्योंकि वो देखता है कि ये मुझसे आगे जा रहा है तो मैं इसे कैसे जाने दूं, तो वो उसको ईर्ष्या उसको रहने नहीं देता है। तो तरह तरह का प्रयास करता है कि कैसे उसको नीचे खींचा जाए। श्रील प्रभुपाद जब दिल्ली से जब गुजर रहे थे एक गाड़ी से, तब उसके एक शिष्य थे, तो वो कह रहे थे कि एक एक गाड़ी को देखकर कह रहे थे अलग अलग गाड़ी का नाम, तो कह रहे थे प्रभुपाद देखिए मर्सिडीज, प्रभुपाद देखिए सुसुकी, अलग अलग गाड़ी का नाम बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद कहने लगे वो तो ठीक है मगर तुम गाड़ी का नाम क्यों जप कर रहे हो? तो वो कहने लगे नहीं प्रभुपाद, इतने सारे गाड़ी आपके लिए होना चाहिए, इन लोगों के पास कैसा है? तो प्रभुपाद कहने लगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रख सकता हूं सब। तब प्रभुपाद कहने लगे जब भी किसी भौतिक संपत्ति को देखते हैं तो उससे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसको भगवान की विभूति के रूप में दर्शन करना चाहिए। फिर प्रभुपाद अपने बचपन की कहानी बताने लगे कि किस प्रकार प्रभुपाद जब कॉलेज में जाते थे तो उनके एक मित्र थे, प्रभुपाद जब भी नया शर्ट पहनकर जाते तो वो मित्र हमेशा पूछते थे तुमने नया कपड़ा लिया, नया लिया, नया शर्ट लिया, तो बार बार पूछते थे। तो प्रभुपाद एक दिन परेशान हो गए उनके इस वर्ताव को देखकर, उन्होंने जैसे ही पूछा अभय तुमने नया लिया, तो तुरंत उन्होंने कपड़ा उतार, सीधा शर्ट ही उतार के दे दिया उनको, बोला ये ले लो तुम्हारे लिए है। तो वो तो बेचारा विचलित हो गया। तो प्रभुपाद कहने लगे कि ऐसे ईर्ष्या जो है ये इस प्रकार कब उत्पन्न होता है? जब विषय भोग जब व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, तो उस ईर्ष्या का जो शमन है वो कहां पर शुरू होगा? जब व्यक्ति उसके मूल जो जड़ है वो है काम, जो विषयों का भोगने की जो स्प्रिया है उसको अगर कोई नष्ट करता है, जड़ से उखाड़ कर फेंकता है, तो बड़े आसानी से वो ईर्ष्या का शमन कर सकता है, ईर्ष्या को अपने वशीभूत कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अपने से जो नीचे भक्त है, जो अपने से जो जूनियर भक्त है, उसको हमेशा शिक्षा देना चाहिए, हमारे पास जो अच्छे गुण है उसको देना चाहिए। ये सीनियर भक्तों का एक ड्यूटी है, ऐसे बताते। जब प्रभुपाद ने मालती माता को पूछा कि तुमने कुकिंग सिखाया बाकी लोग को, तो उन्होंने कहा नो प्रभुपाद। तो प्रभुपाद कहने लगे अगर तुम उनको कुकिंग नहीं सिखाओगे तो थोड़े दिन के बाद तुम उनसे ईर्ष्या करना शुरू करोगे, इसीलिए तुम्हें कुकिंग सिखाना जरूरी है। तो जब वरिष्ठ भक्त जब अपने से जो जूनियर भक्त को जब शिक्षा नहीं देते, तो वो जो उनके मन में वही विचार ईर्ष्या के रूप में प्रकट हो जाता है। इस तरह ईर्ष्या जो है उस ईर्ष्या का व्यक्ति शमन कर सकता है। तो यहां पर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि ईर्ष्या के कारण आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में भक्त लोग इस ईर्ष्या से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि भगवत धाम में तभी एंट्री है जब हमारे हृदय में ईर्ष्या नामक चीज नहीं है। अगर ईर्ष्या है, एनवी है, तो नो वैकेंसी, तो उधर वहां पर कोई वी एन वी, वी यानी वैकेंसी, एन यानी कि नो वैकेंसी। क्यों? क्योंकि वहां पर ईर्ष्या जैसे ही किसी के हृदय में है तो वहां पर उसके लिए गेट बंद है। हालांकि वेलकम सबके लिए, जैसे 5-स्टार होटल में लिखा है वेलकम टू ऑल, लेकिन एक भिखारी गया तो फिर उसको धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भिखारी है उनको एंट्री नहीं है। इसी प्रकार जब भगवत धाम में एंट्री सबको है, लेकिन ईर्ष्या अगर हृदय में बैठ गया है तो उसके लिए एंट्री नहीं है। तो ये ऐसा जो ईर्ष्या, जो कि भक्ति में कई साल तक, भक्ति में प्रगति कई वर्ष तक होने के बाद भी वो ईर्ष्या नामक चीज को अगर नहीं खत्म करेंगे तो आगे जाकर उसके लिए बहुत घातक है। इसलिए शुरुआत से ही उसका, उसे शमन करने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह यहाँ पर वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि का इसी कारण से झगड़ा हुआ। हम देखते हैं वृंदावन में रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की जो लीलाएं हैं, उस लीला में बहुत सुंदर एक सीख है वो, कि एक समय जब दिग्विजय आया था तर्क वितर्क करने के लिए, तब उसी समय रूप गोस्वामी के समक्ष उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, मगर रूप गोस्वामी ने कह दिया कि मैं हार गया हूं, तुम जीत गए। और ये सर्टिफिकेट लेकर गए जीव गोस्वामी के पास। तो उन्होंने सुना था कि जीव गोस्वामी बहुत बड़ा तर्क वितर्क, बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है, तो मैं उसके साथ भी तर्क वितर्क करूंगा। तो जीव गोस्वामी को जब वो सर्टिफिकेट दिखाया तो जीव गोस्वामी कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ तर्क करने को तैयार हूं। और जीव गोस्वामी ने उनके साथ 7 दिन तक तर्क किए और उनको हरा दिया अंततगतवा, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे गुरु महाराज का नाम खराब हो। अपने गुरु महाराज के नाम को रक्षा के लिए उन्होंने तर्क किया, जिससे वो हार गए। और ये खबर जब रूप गोस्वामी को प्राप्त हुआ तो तुरंत ही रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को कहा कि तुम यहां से निकल जाओ, गेट आउट, वृंदावन में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इस अहंकार घुस चुका है, जिसके कारण जो ये अहंकार व्यक्ति को केवल ईर्ष्या मद उत्पन्न करता है। और ऐसे उनको वहां से धक्के मार के, वहां से उनको कह दिया, इस प्रकार अपशब्द कहकर उनको वहां से कह दिया कि तुम वृंदावन शीघ्र ही त्याग दो। और जीव गोस्वामी को सनातन गोस्वामी ने वापस लेकर आए और रूप गोस्वामी को कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें 3 प्रिंसिपल दिया है, नामे रुचि वैष्णव सेवा, और एक है वो है जीव दया। तो एक यहां और एक जीव है, उस पर भी दया करो। और इस तरह जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी ये शिक्षा देना चाहते थे कि बिना कारण का तर्क वितर्क या झगड़े में नहीं लगना है। हमारा मूल जो उद्देश्य है वो है जीवेरे स्वरूप है कृष्णरे नित्यदास। केवल इसी, हमारे जीवन में इसी भावनाओं को लक्ष्य रखते हुए कार्य करना है, अन्यथा व्यक्ति अपने जीवन के मार्ग पर दिग्भ्रमित हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, उन दोनों जन अपने लक्ष्य से चूक चुके हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत आज के युग में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के तारीख में जो भौतिक संसार है इतना कलमश और दूषित हो चुका है कि हर व्यक्ति केवल ईर्ष्या कर रहे हैं। ये भौतिक संसार की स्थिति किस प्रकार है, वो उस प्रकार है जैसे कहा जाता है केकड़ों का समाज। जैसे मछली को पकड़ते हैं तो मछली को ढकने के लिए एक नेट होता है, लेकिन केकड़ों को बंद करने के लिए किसी प्रकार का ढक्कन नहीं है। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि ऐसे क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि एक केकड़ा जब जाने का भार प्रयास करता तो दूसरा केकड़ा उनका टांग पकड़कर खींचकर उनके सर पर पैर रखकर भार जाने को देखता तो तीसरा केकड़ा उनका टांग खींचता है, और सारे केकड़े एक दूसरे के टांग खींच रहे, इसलिए भार जाने का प्रश्न ही नहीं, सभी केकड़े एक दूसरे का ढक्कन का कार्य कर रहे हैं, तो ढक्कन क्या लगाना है। और वैसे है भौतिक संसार, जो भौतिक संसार सभी लोग एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं। इसलिए जो ईर्ष्या ऐसा वस्तु है कि जिसमें व्यक्ति केवल आपस में झगड़ा उत्पन्न कराता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था उसी समय, समुद्र मंथन के समय पर जब धन्वंतरी अमृत लेकर निकला तो जितने भी असुरगण थे वो सभी लोग देवताओं से झगड़ा कर कर उस अमृत को लेकर भाग गए। अब जब भागे तो सारे असुरगण आपस में अब झगड़ा शुरू हो गया। तो पहला राउंड तो सक्सेस हो गया, अभी सेकंड राउंड शुरू हुआ है। अब सारे असुर लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि पहला अमृत कौन पिएगा। तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी मिथा कलिर अबुत्तेषाम तत्थे तर्श चेतसाम अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभु। तो एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं बड़े खानदान से आया हूं, पहला अमृत मैं पीऊंगा। तो दूसरा कहता है मैं पहला पीऊंगा क्योंकि मैं बलशाली हूं सबसे ज्यादा। तो तीसरा कहता है मैं सबसे लंबा हूं तो मैं पहला पीऊंगा। तो चौथा कहता है उसके पास कुछ बल शक्ति नहीं है। तो कहता है ये सब ठीक नहीं है, देवताओं को भी थोड़ा मिलना चाहिए। अब कुछ बिल ले रहा है तो फिलोसॉफी बोल रहा है और इस तरह आपस में सभी झगड़ा कर रहे और कह रहे तुम नहीं पियोगे तुम नहीं पियोगे, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा। केवल इस प्रकार ईर्ष्या से सभी झगड़ा कर रहे लेकिन मिला किसी को नहीं। और भगवान की माया शक्ति ने इस प्रकार सभी को झगड़े में लगा दिया। तो वो जो स्पर्धा व्यक्ति को इस प्रकार प्रदान करता है कि वो उसके लक्ष्य को ही खो देता है। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में भी स्पर्धा होता है, मगर वो स्पर्धा भक्तों को उत्साहित करता है। जैसे दशम स्कंद में वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण और बलराम जी जब वनों में विचरण करने के लिए जब निकले पूरे ग्वाल बाल के साथ, तो कई दूर तक चले गए और काफी दूर तक गए। तब उसी समय जितने भी ग्वाल बाल थे उन लोगों ने शर्त रखा कि जब कृष्ण हमारे आंखों से ओझल हो जाएंगे तब दौड़ लगाना है, और ये दौड़ लगाना है कि कौन पहला कृष्ण को पकड़ेगा। और ऐसे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, यदि दूरे गतम कृष्णे वन शोक छनायतम अहम पूर्वम इति संस्पर्श रे मेरे। तो कह रहे हैं कि जब कृष्ण बहुत दूर हो गए, उज्जल हो गए आंखों से, तो सारे जितने भी ग्वाल बाल थे अब दौड़ लगाए कृष्ण को पकड़ने के लिए। और क्या कह रहे, अहम पूर्वम, पहले मैं कृष्ण को पकड़ूंगा, पहले मैं कृष्ण को पकड़ूंगा। और ऐसे कहकर भाग रहे और दूसरे भक्त को उत्साहित कर रहे, तुम भी भागो, तुम भी मुझसे ज्यादा भागो। और इस प्रकार सारे भक्त, इस प्रकार जितने भी ग्वाल बाल थे सभी लोग कृष्ण को प्राप्त करने के लिए एक स्पर्धा चलाए। और वो स्पर्धा केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से केवल पोषण करता है। इस प्रकार जो स्पर्धा जो आध्यात्मिक स्थिति में है वो स्पर्धा वास्तविक में लाभदायक है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। एनी कमेंट? वनमाली प्रभु कमेंट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।